ओम शांति। जो दिल के खूबसूरत होते हैं, जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे बहुत लोग कम बनाए हैं जो दिल के खूबसूरत होते हैं। जो बनाए हैं वो आज हमारी सभा में आए हैं। आप बहुत कोऑपरेटिव, आपकी नेचर है, बहुत सरल हैं, मृदुभाषी हैं और एक कुशल वक्ता हैं। हमारी परम आदरणीय उषा दीदी जी हमारे बीच हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन और नमन करते हैं। दीदी किसी परिचय के वैसे मोहताज नहीं है, हम सभी जानते हैं उनको। ये भी जानते हैं कि 12 वर्ष की अल्प आयु में आपने गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचाना और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत 45 ईयर से भी ज्यादा आपने मानवता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया। आपने अनेक चुनौतियों को फेस किया है लाइफ में। सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स द्वारा अनेक आत्माओं को जीवन जीने की कला सिखाने के आप निमित्त बने। रामायण गीता का आध्यात्मिक गुह्य रहस्य द्रव्य श्रव्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। भारत ही नहीं वरन विश्व के कोने कोने में बाबा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प आपने अपनी वाक्पटुता सरलता द्वारा पूरा किया। क्योंकि दीदी जब बोलना शुरू करते हैं तो कैसे लगता है, हा? मुझे याद आता है हैदराबाद में जब दीदी बोल रहे थे, जब संत लोग भी सभी थे, तो कैसा लग रहा था आपको, हा? कैसा लग रहा था, हाँ? ऐसे बरदानी बोल चल रहे थे पावरफुल, जैसे कि बाबा स्वयं आकर के सबको शिक्षा दे रहे हूं। आप पॉलिटिशियन विंग की माउंट आबू कोऑर्डिनेटर हैं और आपकी ओजस्वी वाणी से आज हम सुनेंगे 3 बिंदुओं का व्यवहारिक महत्व। आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के हम सभी नैनों के नूर रूहानी बच्चे विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने जब हर एक बच्चे को चुना है तो भगवान की सिलेक्शन कभी कम हो सकती है क्या? इसलिए हर एक बच्चा बाबा का जो भी बैठा हुआ है, खाली एक रत्न कोई विशेष नहीं है, लेकिन हर एक रत्न विशेष है। क्योंकि ये भगवान की सिलेक्शन है और भगवान कोई ऐसे वैसे को तो चुनता नहीं है। भगवान की सिलेक्शन कैसी होगी, जो एकदम यूनिक होगा वही भगवान सिलेक्ट करेगा। तो सारी दुनिया में से इतनी आत्माओं को अगर सिलेक्ट किया तो वो नशा बाबा जो मुरली में हमें चढ़ाता है, वो नशा भी कायम रहना चाहिए कि हम बाबा के विशेष रत्न है, साधारण नहीं है। और इस स्मृति से भी धीरे धीरे हम विशेष बन ही जाते हैं। संडे की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर कहा, 2 पुरुषार्थ बताता है बाबा। सारे ज्ञान का सार कहो या पुरुषार्थ का सार कहो, तो 2 बातें बाबा ने बताई। और दो बातें कौन सी बताई कि बच्चे तीन बिंदु लगाओ प्रैक्टिकली और दुआएं दो दुआएं लो, बस यही पुरुषार्थ है ब्राह्मण जीवन का। और सचमुच उस पर मैं जब विचार करने लगी कि इतना प्रैक्टिकल बाबा बताता है और सचमुच उसके ऊपर अगर चलना चालू करे, प्रैक्टिकल जीवन बनाना चालू करे इसी दो बातों पर, तो भी हम संपूर्णता को सहज प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने भी शायद इन्हीं दो बातों पर विशेष अटेंशन देकर पुरुषार्थ किया, क्योंकि एक तो जो हम बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरते हैं वो शक्ति सारी समाप्त होती है जब व्यर्थ संकल्प चलना आरंभ हो जाता है। व्यर्थ संकल्प न भी हो, चलो नेगेटिव तो है ही नहीं, व्यर्थ संकल्प न भी हो, साधारण संकल्प भी चलना शुरू होता है तो उतनी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, ताकत क्षीण होना शुरू हो जाती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये सहज पुरुषार्थ प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि बच्चे तीन बिंदु लगाओ। एक बार किसी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि बिंदु लगाने का भाव क्या है। ऐसे तो है नहीं कि बिंदु उठाकर यहां लगा दिया और संकल्प हमारे स्टॉप हो जाए, ये तो होगा नहीं। तो बिंदु लगाने का भाव क्या है बाबा का? तो विचार चलने लगा कि बिंदु लगाना किसको कहा जाता है। पहली बात, बिंदु लगाना माना आत्मा को देखना, आत्मिक दृष्टि को डेवलप करना और आत्मिक स्थिति में रह करके हर एक के साथ व्यवहार में आना, ये उसका व्यवहारिक स्वरूप। जितना हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, हर एक को आत्म रूप में देखना आरंभ करेंगे, वो तब होगा जब मैं खुद भी अपने आप को आत्म समझ करके रहती हूँ, कर्म करती हूँ, बातचीत करती हूँ। आत्मा इन खिड़कियों के द्वारा देख रही है, आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही है, ये अभ्यास बार बार करना पड़ता है। जिस तरह से एक बच्चे को जब स्कूल में दाखिला करते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है और उसको ABCD जब सिखाते हैं तो बार बार घुटाते रहते हैं। एक साल तक स्कूल में भी उसको घुटाते रहेंगे, होमवर्क के लिए भी भाई 10 बार ABCD लिख करके ले आओ, तब जाकर के एक साल के बाद वो ABCD सहजता से लिखना शुरू करता है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को बार बार रोज मुरली के अंदर ये घुटाता रहता है कि बच्चे आत्मिक स्थिति में रहो, स्वयं को आत्म समझ करके बैठो, बाप को याद करो, आत्म समझ करके चलो और सबको आत्म रूप में देखो। ये कितना घुटाना पड़ेगा। अगर हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है, तो ये अभ्यास जितना अधिक हम करते जाते हैं तो बिंदु लगाना भी सहज हो जाता है और बिंदु रूप में देखना भी आसान हो जाता है। तो कोई भी बात में बिंदु लगाना सहज। जब आप किसी को बिंदु रूप में देखते हैं, विचार ये चला, जब किसी को बिंदु रूप में देखते हैं तो नेचुरल एक मुस्कुराहट आएगी, ये भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। देह को नहीं देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे। अब वो उस समय गुस्से में आकर कुछ भी बोले, उल्टा सीधा शब्द, तो शायद ये अभ्यास वो शब्दों को कानों के अंदर जाने नहीं देगा, और इसीलिए जब उनकी बातें सुनाई नहीं देंगी तो व्यर्थ संकल्प चलेगा ही नहीं। कितना सरल पुरुषार्थ है ये। हम देह को देखते हैं, देह के द्वारा बोली गई बातों को सुनते हैं, और वो बातें अंदर चली जाती है तो फीलिंग ले आती है, मूड अपसेट हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था उसको, इतनी भी समझ नहीं। हम कितनी सारी बातें सोचना शुरू कर देते हैं कि खुद को अपने को क्या समझता है, आदि 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 कितनी बातें आती है। तो बिंदु लगाना माना, बिंदु बन बिंदु देखने का अभ्यास पक्का करना, ये पहला पाठ अंत समय भी बहुत काम में आने वाला है। दूसरा के जब बिंदु बन करके हम कोई भी दृश्य को देखेंगे ड्रामा के, तो बिंदु लगाना भी आसान हो जाएगा। भावार्थ के साक्षी दृष्टा स्थिति हमारी सहज बनने लगेगी। मैं आत्मा बिंदु हूं, बाबा बिंदु है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ड्रामा का बिंदु लगाना माना, ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी रूप में देखना। कैसे कैसे देख पाएंगे? क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है। ड्रामा का रचता कौन है? ड्रामा रचना है, तो ड्रामा रचना का रचता कौन है? बाबा है। बाबा कई बार कहते हैं कि ये ड्रामा की आदि मध्य अंत, ये रचना का ज्ञान बाबा देता है हम बच्चों को। तो ये रचना का रचता कौन है? बाबा है। और जिस तरह दुनिया के अंदर भी कोई परफेक्शनिस्ट होता है, हर बात परफेक्ट चाहिए उसको, ये चीज यहां रहे माने यही रहेगी, परफेक्ट स्थिति उसकी जगह बनी होती है। जो कोई भी आकर देखता है कितनी परफेक्ट जगह पर ये चीज रखी है ना? तो बाबा अगर परफेक्ट है और उस परफेक्शनिस्ट ने ये रचना रची है, तो उसकी रचना भी तो परफेक्ट होगी। उस रचना में अगर गलती निकालना कि ड्रामा ठीक नहीं है, माना क्या मैं बाबा से ज्यादा समझदार हो गई? क्योंकि मैं सिर्फ वर्तमान काल को देखती हूं, त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के नहीं देख रही हूं, इसलिए मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट है, उसने आदि मध्य अंत को समझते हुए उस सीन को क्रिएट किया है, वो सीन को वहां रखा है, तो वो सीन भी परफेक्ट ही है। तो जब ड्रामा को देखे माना एक्यूरेट और परफेक्ट है। जो चीज परफेक्ट है उसके लिए व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं? कभी चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए मामा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा को कल्याणकारी रूप में देखो। ड्रामा माँ है, ड्रामा तो ड्रामा माँ है, पिता हमारा कल्याणकारी, माँ कल्याणकारी, तो हम बच्चों का अकल्याण करने की हिम्मत और ताकत किसकी हो सकती है बताओ? जिसके लिए हम व्यर्थ संकल्प चलाएं, तो ड्रामा बिंदु लगाना आसान हो जाएगा। परफेक्ट है, एक्यूरेट है, इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। वेट एंड वॉच बाबा भी हमेशा कई बार मुरली में कहते हैं, कोई सीन अगर ऐसी आई भी तो भी आप यही सोचो कि इसमें जरूर कोई कल्याण समाया है। वेट एंड वॉच, थोड़ा समय बीत जाने दो, फिर ड्रामा अपने आप वो पर्दा खोलेगा, इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। और उस समय जब ये गीत मन से निकलेगा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, तो उसके बदले पहले से ही ये गीत गाना चालू करो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो बाबा कहते अगर वो सीन वाह वाह नहीं होगी तो भी वाह वाह बन जाएगी। और वाह वाह बनाना ये है फुल स्टॉप लगाना, कि हर सीन को वाह वाह देखना और वाह वाह बनाना उसको। जब वाह वाह देखेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेगा ही नहीं। बहुत सुंदर हर सीन हमें महसूस होने लगे कि वाह बाबा का परिवार, वाह इतनी अच्छी आत्मा है, भगवान की सिलेक्शन। ये नहीं कहिए है ही बेकार व्यक्ति, माना मैंने भगवान की सिलेक्शन को अगर रिजेक्ट किया तो मैं ज्यादा समझदार हो गई, मैं ये प्रूव करना चाहती हूं। और तब मेरे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प अथाह चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, बाबा की हर सिलेक्शन भी अति श्रेष्ठ और सुंदर है। ये ड्रामा अति कल्याणकारी है क्योंकि ड्रामा माँ है। जिस तरह घर में बच्चा होता है, बच्चा कोई गलती अगर कर भी लेता है तो माँ क्या करती है, उसका कान पकड़ती है। लेकिन कान पकड़ना अगर थप्पड़ भी लगाती है तो मन के अंदर ये भाव नहीं होता है कि इसको मैं मारूं या उसका अहित कर दूं। मन में भाव यही रहता है बच्चा सुधर जाए, अच्छा हो जाए, नाम बाला करे बाप का, यही माँ के हृदय में भावना होती है। ठीक इसी तरह ड्रामा माँ भी इतनी कल्याणकारी है कि अगर हमसे पुराने संस्कारों के वशीभूत, तो ड्रामा भी कान खींचती है, थप्पड़ भी लगाती है। महसूस होता है कि ड्रामा ने यह थप्पड़ लगाई लेकिन अकल्याण के लिए नहीं, यही भावना है ड्रामा माँ के हृदय में कि इसका कल्याण हो जाए, ये बाबा का नाम बदनाम न करे, बाबा का नाम बाला करे, इसके लिए वो थप्पड़ भी लगती है। तो व्यर्थ संकल्प चलाने की जरूरत नहीं, तो बिंदु लगाना माना हर बार ये स्मृति स्वरूप बनना, इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। और कल्याण देखने की दृष्टि अगर प्राप्त हो जाए तो वाह वाह के गीत स्वतः निकलने लगेंगे, और जहां वाह वाह करते चलेंगे तो अकल्याण की कोई बात हो ही नहीं सकती है। तीसरा, बिंदु लगाना माना अपने संकल्पों को एक दिशा देना, डाइवर्ट करना। मानो कोई ऐसी घटना हो गई या ऐसी बात हो गई जो आपके बहुत व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो गए, नेगेटिव नहीं, व्यर्थ संकल्प बहुत चलने लगे, क्यों क्या कोई क्वेश्चन आरंभ हो गए मन के अंदर, तो उसको दिशा देना बहुत जरूरी है। तो फुल स्टॉप लगा करके उसको मोड़ दो ताकि आगे एनर्जी वेस्ट ना हो। कहाँ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, व्यर्थ संकल्प इतना चल रहा है, ऐसे समय पर योग में नहीं बैठना, क्योंकि ऐसे समय पर अगर योग में बैठेंगे और ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलेगा। मोड़ने के लिए कोई सेवा करना शुरू कर दो, या वाचा सेवा आरंभ करो, किसी को ज्ञान सुनाना चालू करो। तो ज्ञान सुनाना माना आप किसी और को ज्ञान नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप वही बातें बोलेंगे जो आप खुद को समझा रहे हो। तो मोड़ देना जरूरी है, उसको दिशा देना जरूरी है। इसलिए अपने विचारों को दिशा देने के लिए योग में बैठने के बजाय उस वक्त या वाचा सेवा में बिजी हो जाओ या कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ, और कुछ नहीं, झाड़ू लगाना ही चालू करो, सफाई करना चालू करो, आप देखेंगे आपके विचार धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएंगे। वो व्यर्थ विचार जो चल रहे आप सफाई करना शुरू करेंगे, एक तो भाग्य जमा होना शुरू हो जाएगा, पुण्य का कार्य चालू हो जाएगा। इसलिए बाबा के घर की सेवा भी करते हैं तो भी उसमें जमा का खाता ही बढ़ता है। तो व्यर्थ जो जा रहा है, जो जमा का खाता खाली कर रहा है, उसके बदले आपने अपने विचारों को एक मोड़ दे दिया वाचा सेवा या कर्मणा सेवा में, तो आप खुद देखेंगे आपकी स्थिति भी परिवर्तन होने लगेगी, क्योंकि आपका जमा का खाता बढ़ने लगेगा। सफाई किया आपने बाबा के घर की, खुशी प्राप्त होगी, तो खुशी से वो संकल्प भी चेंज हो जाएंगे और बहुत अच्छा हल्कापन महसूस होगा उसके बाद। इसलिए बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। तो सेवा में अपने आप को जोड़ दो उस वक्त, योग में नहीं बैठना। जब व्यर्थ संकल्प चल रहे हो बहुत तेजी से, उस समय योग में नहीं बैठना। योग में बैठेंगे और ज्यादा व्यर्थ संकल्प पर बाबा के कमरे के वाइब्रेशन आप खराब कर रहे हैं। इसके बदले तो वो भी एक बोझ चढ़ता है और जमा का खाता तो हो नहीं रहा, बाबा की याद आ नहीं रही है, बार बार वो आत्माओं के संकल्प चल रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि बुद्धि बहुत हिल रही है उस वक्त। तो उस समय क्या करो, सेवा करना शुरू करो, सेवा करो, भाग्य जमा होने लगेगा, पुण्य का खाता जमा होगा, हल्कापन लगेगा और संकल्प भी परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। चौथी बात के बिंदु लगाना माना, मान लो कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी परीक्षा आपके सामने आए, किसी व्यक्ति के संस्कार आपके संस्कार के साथ टकरा गए, तो उस समय बिंदु कैसे लगाएं? तो उस समय उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज करना शुरू करो। ये भी बाबा का बच्चा ही है, चलो अभी अपने पर पुराने संस्कार के वशीभूत है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो ऐसी आत्मा के प्रति दया भावना, करुणा भावना, रहम की भावना इमर्ज हो और शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी परिवर्तन हो जाए, इतना शुद्ध संकल्प आरंभ करे, उसको उस महान दृष्टि से देखे और अपने संकल्पों को धैर्यवत करे। धैर्यता और गंभीरता को धारण करने के साथ उस आत्मा के प्रति अगर शुभ भावना, शुभ कामना, या जैसे बाबा ने कहा दुआ देना चालू करो, क्योंकि शायद उसके खाते में दुआएं कम है, इसीलिए वो पुराने संस्कारों के वशीभूत हो रहा है बार बार, तो उसको दुआओं देना चालू करो। दुआएं देंगे वो वाइब्रेशन उसको पहुंचेगा और आप खुद अनुभव करेंगे, जब आप उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए दुआएं देंगे, शुभ भावना, शुभ कामना देंगे, थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति बदल करके आपके पास आकर के कहेगा, सॉरी उस समय मैंने आपको ये बात कह दिए, माफ करना, मैं उस समय गुस्से में था, आप मुझे माफ कर दें। आपकी शुभ भावना तुरंत रंग दिखाएगा, आधे घंटे के अंदर वो व्यक्ति न आए ये हो ही नहीं सकता है। तो शुभ भावना, शुभ कामना का दान देना, ये है फुल स्टॉप लगाना। उसके प्रति व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय या पर चिंतन करने के बजाय, किसी आत्मा ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, या पर मत जब मिलती है तो पर चिंतन, पर दोष देखना, उस आत्मा का दोष देखते हुए उसका चिंतन करके वर्णन करना और फिर पर मत के वशीभूत होना, या दूसरे को भी अपना साथी बनाना, उसके बदले उस आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना का दान देना शुरू करो। आपको उसकी गलतियां नहीं दिखाई देंगी, आपको उसके प्रति रहम भावना जागृत होगी और बहुत अच्छा महसूस करेंगे।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
बाबा जब हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे किसी आत्मा के अवगुण को देखेंगे, उसकी कमी कमजोरी को देखेंगे और किसी के साथ पर चिंतन पर दर्शन में आप जुड़ जाएंगे तो आपका खाता बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। लेकिन ऐसे समय पर अगर उसको शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की कामना उसके प्रति करना आरंभ करो, दुआएं देना शुरू करो तो वो दुआएं वापस लौट के आती है। तो हमारा खाता खाली नहीं होता है, हमारा खाता भरपूर होता रहता है। और उस आत्मा के साथ अगर कोई हिसाब किताब होगा भी कोई जन्मों का, वो भी शुभ भावना शुभ कामना से बहुत जल्दी चुकतू हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बिंदु लगाना माना शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करना, ये बहुत जरूरी है। कैसे हिसाब किताब हमारा चुकतू होता है, मान लो कि आपने किसी से 500 रुपया उधार लिया तो उसको देना तो पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह कोई जन्मों का हिसाब होगा, हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया इसीलिए इस जन्म में उसने ऐसा व्यवहार करके चुकतू किया। लेकिन ऐसे समय पर फिर हम व्यर्थ संकल्प चलाते माना फिर उस अकाउंट को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर अगर शुभ भावना शुभ कामना देना चालू करो तो वो अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर हो जाए और वो आत्मा भी खुश होकर के आपको दुआएं देते हुए चली जाएंगे। आपका हिसाब किताब और कठिन नहीं बनेगा जो वापस उसको कभी ना कभी चुकतू करना पड़े। व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो जरूर है कि हिसाब थोड़ा बहुत भी बना, और संगम का हिसाब तो बाबा ने बताया ही है एक का 100 गुना, तो अगर वो हिसाब बना तो वापस चुकाना तो पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? उतना दर्द तो मिलेगा ही चुकाने के लिए। उसके बदले शुभ भावना शुभ कामना दे दो, और वो हिसाब जैसे उसका जो था कर्ज वो तो चुका ही दिया, लेकिन इंटरेस्ट भी दे दिया शुभ भावना शुभ कामना के रूप में, तो बहुत जल्दी हम फ्री हो गए। और फ्री हो जाएंगे तो आगे उसको भी आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, ना आपको उसके लिए कोई गिला शिकवा रहेगा। शुभ भावना देने के कारण जो है वो आत्मा भी तृप्त होकर के वो आपके लिए उल्टा कभी बोल नहीं सकती है, ये गारंटी हो जाती है, गारंटी हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाना, माना शुभ भावना शुभ कामना प्रवाहित करना, दुआएं देना, और वो दुआएं लौट कर वापस आने ही है। हमारा खाता भरपूर ही करेगी, खाली नहीं करेगी। पांचवी बात कि बिंदु लगाना माना थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना, अर्थात के अंतर्मुखी होकर के देखो। मान लो कि ड्रामा में कोई सीन ऐसी आई, आत्मा नहीं, चलो कोई सीन ऐसी आ गई जिस सीन को देखते हुए आपको कष्ट हुआ, दर्द हुआ, दुख हुआ, तो आत्मनिरीक्षण उस वक्त करके ये पता लगाओ ये ड्रामा की सीन, ये परिस्थिति, ये समस्या के रूप में, जिस भी रूप में ये विघ्न जिस रूप में आया, ये विघ्न मुझे क्या सिखाने आया था, क्या लेसन सिखाकर गया। तो जब आप उस लेसन को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपका व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, लेकिन समर्थ की ओर आपका चलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएगा कि ये घटना मुझे क्या सिखा के गई, ताकि आगे के लिए हो सकता है कि आगे उससे भी बड़ी घटना होने वाली थी लेकिन मैं बच गई। ड्रामा माँ इतनी कल्याणकारी कि ये छोटी सी घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मैं सावधान हो गई, आगे के लिए मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर ये घटना नहीं घटती थी तो अंतिम समय अगर ये आती थी तो मेरी तो स्थिति खत्म हो जाती थी, क्योंकि अंत मते सो गति। तो ये घटना मुझे अनुभवी मनाने आई, तो जब अनुभवी बनाने आई, आपने उसमें से अनुभव का लेसन तोहफा ले लिया, तो आप सावधान हो गए, अनुभवी हो गए, आगे अंत में अगर इससे भी बड़ी घटना है तो आप पहले से ही तैयार है उसके लिए, तो आपका तो कल्याण ही हुआ पड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, कोई भी घटना कोई भी परिस्थिति कोई भी समस्या उसमें आती है वो आपको कोई न कोई अनुभव का तोहफा देने के लिए जरूर आती है। वो तूफान क्रिएट करने का प्रयत्न अगर करेगी, लेकिन तूफान क्रिएट करने के बजाय जब मैं उसको अनुभवी बन करके अनुभव का तोहफा के रूप में उसको स्वीकार करेगी, तो वो तूफान क्रिएट करने के निमित्त नहीं बन सकती है। अगर तोहफा के रूप में उसको नहीं लिया तो तूफान शुरू हो जाएगा अंदर में, बहुत तूफान चलाएगा, रात की नींद हराम हो जाएगी, रात रात नींद नहीं आएगी, ऐसा तूफान खड़ा करेगी व्यर्थ संकल्पों का। इसलिए हर घटना यही समझो कि ये घटना कोई न कोई अनुभव या सीख रूपी तोहफा मुझे देने आई, और उस तोहफे को स्वीकार कर लो तो आपको खुशी होगी। तूफान क्रिएट हो ही नहीं सकता है, तूफान क्रिएट होने से पहले आपने उसको खत्म कर दिया। नहीं तो प्रैक्टिकल देखते हैं कि जब तूफान खड़ा होता है, समुद्री में भी अगर तूफान खड़ा हुआ तो कितना धरती पर टकराने के बाद कितना तहस नहस कर सकता है वो तूफान, तो अंदर जो तूफान क्रिएट होगा वो कितना तहस नहस कर सकता है, सोचो तो सही, हमारी पूरी स्थिति खत्म कर सकता है। संपूर्णता तक जाने के लिए जैसे रास्ते बंद हो जाएंगे ऐसा तहस नहस करेगा। इसलिए आप यही समझो कि ये घटना जो घटी बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि मुझे एक सीख तो मिल गई, अनुभव तो मिल गया, ये तोहफा तो मिल गया, ता आगे के लिए मैं बच गई। तो थैंक्स बाबा का, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ड्रामा का, शुक्रिया उस आत्मा का जो भी निमित्त बने हो, तो उसको बिंदी लगाकर आप दुआ देना चालू करो, थैंक्स कहते हुए, शुक्रिया कहते हो। तो शुक्रिया कहा माना वो तूफान को नलीफाई कर दिया आपने, एकदम समाप्त कर दिया, वो तूफान क्रिएट हो ही नहीं सकता है उसके बाद, तूफान को खत्म कर दिया आपने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया ये आत्मा जो निमित्त बने, शुक्रिया ये परिस्थिति, हर बात में शुक्रिया मानना चालू करो, देखो कैसा अनुभव होता है उसके बाद। उसके बाद तूफान इमर्ज हो ही नहीं सकता है, जब शुक्रिया कह दिया तो तूफान कहाँ से उत्पन्न होगा, है ना। हमारे पास यज्ञ में एक भाई था, अभी तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन बड़ा गुस्से वाला भाई था, बहुत गुस्सा आता था उसको जब लौकिक जीवन में था। लेकिन बाबा का ज्ञान मिलने के बाद उसने अपने जीवन में ये परिवर्तन लाया कि कोई भी ड्रामा की सीन होती थी ना, वो सबके आगे वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह रे ब्राह्मण परिवार वाह, वाह वाह का गीत गाता था, शुक्रिया बाबा का करता था, हर बार शुक्रिया करता था। अगर मान लो कि यज्ञ में उसके सामने थाली जो आई और उस थाली के अंदर नमक ज्यादा हो गया, माना सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, तो कहता था कि अगर मैं लौकिक जीवन में होता था ना, ये थाली उठा के फेंक देता था, इतना गुस्सा मुझे आता था। लेकिन बाबा का बनने के बाद बाबा ने ये वाह वाह का जो गीत बताया है, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा वाह, ये वाह वाह ने तो कमाल ही कर दिया। तो कहा जब थाली आती है मानो नमक ज्यादा हो सब्जी में, तो भी मैं कहता हूँ वाह बाबा, खा करके मालूम होता है नमक ज्यादा है, तो थाली फेंकने के बजाय अभी कहता हूँ वाह बाबा वाह, तुमने भी यही सब्जी खाई, मैं भी यही खा रहा हूँ, वाह बाबा वाह। अब जो वाह वाह कर रहा हो, शुक्रिया बाबा कर रहा हो कि मुझे भोजन तो मिल रहा है तैयार यज्ञ के अंदर, तो जो शुक्रिया मामा का उसको गुस्सा आएगा, तो क्रोध को जीतने का कितना सुंदर बाबा ने ये तरीका बताया, वाह वाह के गीत गाना चालू करो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, सब्जी में नमक नहीं भी है तो भी कहो वाह बाबा वाह, तुमने भी यही भोग स्वीकार किया, मैं भी यही भोग स्वीकार करता हूँ, उसके बाद गुस्सा आएगा क्या बताओ, है ना। तो अंतर्मुखी हो करके कभी कभी आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि कहां पर कोई ऐसी बात है। तो ये ड्रामा के सीन ने मुझे ये अनुभव का तोहफा दिया है, अब मैं अनुभवी आत्मा बन गई, और अनुभव की अथॉरिटी जो बन जाता है उसको ड्रामा कभी भी कोई भी सीन उसको हरा नहीं सकती है, वो सदा विजयी बन करके रहती है। तो ऐसी विजयी आत्मा बनने की उसको विधि मिल गई, इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर के कभी कभी अंदर जाओ, और क्या अनुभव का तोहफा मिला, क्या सीख का तोहफा मिला, और फिर शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ड्रामा का, ये बिंदी लग गई। इतना सहज है बिंदी लगाना, बिंदी लगाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। और एक बात कि बिंदी लगाना माना बाबा के प्यार को अनुभव करना। अब इसमें बाबा का प्यार क्या है, कैसे बाबा का प्यार अनुभव करे, तो बाबा का प्यार अनुभव करना माना बाबा तो जानता है, हर एक बच्चे के भविष्य को जानता है कि आने वाले समय में उसके सामने कैसी कैसी परिस्थिति आएगी, कैसे कैसे पेपर आएगा, बाबा तो जानता है। तो बाबा का प्यार हम बच्चों से इतना है जो बाबा हमें उसका अभ्यास करा रहा है। जैसे मान लो कि कभी कभी कोई विद्यार्थी होते हैं ना स्कूल के अंदर, मुझे याद आता है कि बचपन में मैं स्कूल में जब थी तो हमारा एक मैथ्स का टीचर था, तो उसको अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम बाबा के बच्चे थे तो अपनी धारणाएं अपना व्यवहार देख करके उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो उसका जैसे टीचर का कोई ना कोई बच्चे से विशेष प्यार होता है, तो वो जब मैथ्स के कुछ ये सम्स देते थे तो परीक्षा यूनिट टेस्ट जब लेते थे तो परीक्षा जब देते थे तो हम वो छोटे बच्चे थे तो गलती तो होती है, कोई ना कोई गिनती में करने में गलती होती थी, तो वो यूनिट टेस्ट के समय ऐसे चक्कर लगाता था क्लास में और जहां मैं बैठती थी वहां आके खड़ा हो जाता था देखने के लिए मैं क्या कर रही हूं। अब टीचर खड़ा होगा सिर पे तो गलती तो होनी ही है, तो गलती हो जाती थी तो उसको अंदर में बड़ा गुस्सा आता था, फिर वही गलती कर दिया, फिर क्या करता था लास्ट में सभी जो पेपर अपनी नोटबुक जमा कराते थे चेक करने के लिए तो मेरी नोटबुक नहीं लेता था, लास्ट में आना लास्ट में, और फिर लास्ट में जब मैं खड़ी रहती थी तो मेरे को कहता है, तब तक क्या करता था वो 10 ऐसे दाखले निकाल के रखता था मेरे लिए और मेरे को कहता था तुमको नहीं जाना है बैठो पीछे, क्लास में लास्ट में बिठाता था और आधा घंटा, और आधा घंटा बिठा करके ये 10 मैंने सम्स निकाले हैं ये फिर से करो, पक्का कराने के लिए पक्का कराता था ताकि फाइनल एग्जाम में मैं ये गलतियां न करूं, ये उसका प्यार था। लेकिन उस प्यार को हम समझ नहीं पाते थे उस वक्त, लेकिन वो 10 जो सम्स दे देता था ना, मैं सोचती सारे लोग चले गए मेरे को बिठा कर रख दिया यहाँ पर, तो मेरे को भी उसके प्रति बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि मैं उसके प्यार को तो समझ नहीं पाती थी कि उसका मेरे से इतना प्यार है कि मैं फाइनल एग्जाम में फेल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वो मुझे 10 सम्स दे करके प्रैक्टिस करा रहा है। और सचमुच वो प्रैक्टिस इतनी कराई गई थी मुझे कि फाइनल एग्जाम में मेरा 99 जब आया मैथ्स में, उस मेरी खुशी से ज्यादा उसको खुशी थी, उसको खुशी थी कि वाह तुमने कर दिखाया। ठीक इसी तरह बाबा जो सुप्रीम टीचर है उसका भी हमारे से इतना प्यार है, जब वो ऊपर से देखता है ये बच्चा बार बार गलती कर रहा है, उसका प्यार है ना, तो वो क्या करेगा, कोई घटना में हमें और वो जानता है भविष्य में फाइनल पेपर में ये जरूर आना है उसके सामने, तो वो भी हमें उसका अभ्यास कराता है। इसीलिए कई बार कई लोग क्या कहते हैं, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों क्यों होता है बाबा, बार बार मेरी यही परीक्षा क्यों लेता है ड्रामा, बार बार मेरी यही परीक्षा क्यों लेता, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए लेता है। ये ड्रामा का और बाबा का प्यार है, ये प्यार है, ताकि अंतिम समय अगर मेरे सामने ये परिस्थिति आए तो मैं पास विथ ऑनर्स हो जाऊं, क्योंकि बाबा मुझे 108 की माला में लाना चाहता है। ये बाबा का प्यार है, इसीलिए बार बार मेरे साथ ऐसा होता है तो उसमें अपसेट होने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय बाबा के प्यार को अनुभव करो कि बाबा कितना प्यार करता है मुझे, बार बार ये अभ्यास, क्योंकि शायद यही कमजोरी के कारण मैं बार बार फेल होती हूँ और बाबा मुझे फेल होते हुए देखना नहीं चाहता है, बाबा यही चाहता है ये पास विथ ऑनर्स हो जाए फाइनल पेपर में। ये दृष्टिकोण अगर अपना लिया तो बिंदी लगेगी या नहीं लगेगी, लग जाएगी और बाबा के प्यार को भी अनुभव करेंगे। वाह बाबा कितना प्यार करता है तू मुझे, हाँ बार बार अंदर से निकलेगा कि बाबा इतना प्यार करता है। कौन करेगा इतना प्यार इस संसार के अंदर जितना बाबा हम बच्चों से करता है। बाबा हर एक बच्चे की कमी कमजोरी को जानते हुए भी उसने अगर मुझे अपना बनाया है और अपना बना करके उसने अगर बार बार मुझे ये परिस्थिति देते हुए, क्योंकि उससे बहुत बड़े स्वरूप में अंत में ये पेपर आने वाला है, वो जानता है, जानी जाननहार कहा ना उसको, वो जानता है। और बाबा नहीं चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं, इसीलिए मुझे अभी से प्रैक्टिस करा रहा है। और ये प्रैक्टिस कराते 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 क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, पास विथ ऑनर हो जाएंगे। उस समय आप देखना आपकी खुशी से ज्यादा बाबा की खुशी होगी, इतनी बाबा को खुशी होगी कि वाह बच्चा मेरा पास हो गया, हाँ पास विथ ऑनर हो गया, तो कितनी खुशी बाबा। अब इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आपको क्या होगा, फुल स्टॉप लगेगा या नहीं लगेगा, बहुत सहज लग। तो दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ये शिकायत नहीं करो बार बार मेरे सामने ये पेपर क्यों आता है, बार बार मेरे सामने बाबा भी ड्रामा भी यही पेपर क्यों लाता। लेकिन आत्मनिरीक्षण करते हुए बाबा के प्यार को अनुभव करते हुए देखो कि कहां मुझे अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है, ताकि अंतिम समय मैं पास विथ ऑनर सहजता से हो जाऊं। ये बाबा चाहता है, तो इसीलिए बाबा के प्यार को महसूस करो। और अंत में बिंदी लगाना माना, बाबा मुझे नई चैलेंज के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, उस चुनौती को पार करने के लिए बाबा मुझे तैयार कर रहा है। बाबा ने अपना बनाया है तो बाबा अपना नाम थोड़ी खराब करेगा कि दुनिया वाले ये कहे ये भगवान की रचना ऐसी, हाँ ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे करते हैं, इतनी भी चुनौती को फेस करने की इसमें ताकत नहीं, और कहते सर्वशक्तिवान के बच्चे हम, ये सर्वशक्ति। तो बाबा तो नहीं चाहेगा और हम भी नहीं चाहेंगे कि कहीं मेरे द्वारा बाबा का नाम बदनाम हो। तो बड़ी चुनौती के लिए हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि उस चुनौती के द्वारा बाबा मेरे भाग्य का द्वार खोलना चाहते हैं। वो कहते हैं ना सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा। तो कुछ करेंगे तभी तो भाग्य का द्वार खुलेगा। तो कोई चुनौती आएगी जीवन में, वो चुनौती को आप सहजता से पार करेंगे, सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ जब पार करेंगे तब सिमसिम भाग्य का दरवाजा खुल जा। अगर नेगेटिव मनोवृत्ति को अपना लिया गया और नेगेटिव मनोवृत्ति के साथ अगर ये चुनौती को पार करने का प्रयत्न किया तो भाग्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन आप सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ उस चुनौती को पार करके देखो तो सिमसिम दरवाजा खुल जा और भाग्य का द्वार खुलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। कभी कोई आपको गिरा नहीं सकता है, कोई आपको आपकी टांग खींच नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना भाई फलाने मैं तो आगे बढ़ रहा था उसने मेरी टांग खींच ली, कोई नहीं खींच सकता है। आपको जो भाग्य मिलना है आपने अगर ये चुनौती को सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ अगर पार किया तो वो चुनौती के द्वारा ही वो भाग्य का दरवाजा खुलना है, वही उसकी चाबी है। तो जैसे ही वो पार किया सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ तो आप देखेंगे कि भाग्य का दरवाजा खुला और उसके बाद देखो आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको पीछे कर नहीं सकता है, क्योंकि आपने इतनी सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ उसको एड्रेस किया है। तो वो खुलना ही है। अगर उसने खींचने का प्रयत्न भी किया तो उसका हाथ स्लिप हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, वो पीछे ही रह जाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आपके भाग्य से आपको वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि भाग्य बनता है कर्म से। कर्म आप कर रहे हैं तो भाग्य किसी और को मिल जाए, ये हो नहीं सकता है, ताकत नहीं है ड्रामा के अंदर किसी की। तो इसीलिए आप कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए उस चुनौती को पार करो, सकारात्मक पॉजिटिव कर्म करते हुए आप उस चुनौती को पार करो, तो कोई की मजाल नहीं जो आपको पीछे खींच सके, कोई की ताकत नहीं जो आपको वो हाथ, जैसे किसी का पैर पकड़ा, बॉक्सिंग करने जाते हैं तो बाबा कई बार नहीं कहते बॉक्सिंग है माया के साथ, तो उसने पैर पकड़ा तो स्लिप हो जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे वो पीछे गिर जाएगा, अगर करने जाएगा तो भी। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप अच्छे कर्म करो और सिम सिम भाग्य का दरवाजा खोलते जाओ, एक के बाद एक दरवाजा खोलते जाओ और आप खुशी के अंदर नाचते रहेंगे, खुशी के गीत गाते रहेंगे। जो बाबा देखना चाहता है कि मेरा हर बच्चा खुशी का गीत गाता चले, खुशी में नाचता हुआ संपूर्णता को प्राप्त कर ले, और सबको दुआएं देते जाओ, बस फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ते जाओ, व्यर्थ संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल बाबा ने व्यवहारिक स्वरूप हमें दिखाया है, तीन बिंदी का व्यवहारिक स्वरूप, जीवन में ये जो अनेक बातें आती है उसको पार करने की यही विधि है, उसके सिवाय और कोई विधि नहीं है। यही बिंदी लगाना सहज है या मुश्किल है? अभी सहज है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, तो हमारा कल्याण कोई कर नहीं सकता है। आत्मा को देखो, रूह को देखो, देह को न देखो, देह अभिमान में आकर कर्म न करो। साथ ही साथ जो बाबा ने कहा, शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करो अपने मन के विचारों को दिशा देते हुए, और बड़ी बात को छोटी करना ये है बिंदी लगाना, छोटी बात को बड़ा करना इसको बिंदी लगाना नहीं कहते, उसको क्वेश्चन मार्क लगाना कहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्यों ना हो लेकिन उसको छोटी कर देना, कोई पूछता है अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही बस बात को खत्म कर दो, इसको कहते बिंदी लगाना। बात को बड़ी जो करता है वो प्रॉब्लम्स ही खड़ा करता है और खुद के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए बाबा कहते बड़ी बात को छोटी करो, पहाड़ को राय बनाओ, राय तो क्या रुई बनाओ, इतना हल्का वो उड़ जाए, उस बात को महत्व ही न दो और कहो कुछ नहीं हुआ, सामने वाले का भी संकल्प नील कर दो, इसको कहते बिंदी लगाना। तो ये बिंदी लगाने का व्यवहारिक स्वरूप, कई लोग होते हैं है बात कुछ नहीं और बात का बतंगड़ बना देते हैं इतना बड़ा, इसको बिंदी लगाना नहीं कहा जाता है। तो बिंदी लगाना सीखो, बात कुछ नहीं है ये कह करके दूसरे के व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो, तब पास विथ ऑनर। एक खाली ये बिंदी लगाने का कोई सीख ले जीवन के अंदर, वो पास विथ ऑनर तो क्या संपूर्णता को प्राप्त सहजता से कर सकते हैं। ये हमने अपनी बड़ी दादी जी में देखा था, बड़ी दादी कभी भी कोई भी छोटी बात को बड़ा नहीं करती थी, छोटा कर देती, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना, कोई बात अगर हुई भी होती थी तो कहती थी कुछ नहीं है छोड़ दो, अरे कुछ नहीं है, है ना, चली गई वो बात तो चली गई। तो बात को खत्म कर दो, बीती सो बीती करो, बात गई बीत गई बात गई, है ना, बस ऐसे समाप्त कर दो, इसको कहते बिंदी लगाना, दोबारा वो खड़ी ना हो सके ऐसी बिंदी लगा दो उसको, ठीक है। तो ये है बिंदी लगाने का व्यवहारिक स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।
में।